आप सुन रहे हैं प्रतिनिधि कहानियां बाय इस्मत चुगताई, मेरी यानी सुरभि की आवाज में। और आज की कहानी है जरूरत। मेरा दिल हथौड़े की चोटों की तरह धड़क रहा था। फूलों और अंबर की मदहोश शकुन खुशबू दिलो दिमाग को बुरी तरह झिंझोड़ रही थी। लड़कियां बालियां दूल्हा को अजलाए अरूसी की तरफ ला रही थी। कुंवारियां चहक रही थी, ब्याहियां जेरे लब मुस्कुरा रही थी, और मैं आने वाली घड़ियों के इंतजार में थर थर कांप रही थी। सुहाग रात हर दोशीजा के ख्वाबों की ताबीर होती है। मेरे हाथ बर्फ की डालियों की तरह सर्द हो रहे थे, पेशानी पर पसीना फूट रहा था। दरवाजा खुला और लड़कियों के कहकहों के साथ ही वह एक झटके से अंदर दाखिल हुए और चटकनी चढ़ा दी। मैंने जोर से आंखें भींच ली। बीबी, दूल्हा को दीदे फाड़ कर मत घूरियो, यू लाज शर्म तो औरत का जेवर है, दादी बी ने कान में फूंका था। दूल्हा घूंघट उठाए, थोड़ी ऊंची करे, मिन्नत समाजत करे, अपनी जान की कस्में दे, तब जरा सी आंखें खोलना, फिर झट से बंद कर लेना। दीदा हवाई लड़कियों से मर्द कन्नी काट जावे हैं। लजाई शर्माई दुल्हन जचती है, मर्द का दिल मोहब्बत से छलक उठता है। मुझे उस वक्त कुछ भी याद ना था, यह भी नहीं कि प्रीवियस में मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी। फाइनल बीए के इम्तिहान में 4 माह रह गए थे। मैं बहुत रोई पिटी कि बीए तो कर लेने दीजिए, मगर कौन सुनता। अरे वह सर्विस पर जा रहा है, बार बार छुट्टियां नहीं मिला करती, और फिर ऐसा लड़का नसीबों वालों को मिलता है। लोग तो जले मर रहे हैं, लखपति बेटियां थाल में सजा कर देने को तैयार हैं, और फिर मुझसे छोटी 2 बहनें छाती पर धरी थीं। भाई शादियां करके अलग हो चुके थे, अब्बा जान की पेंशन हुए 4 साल गुजर चुके थे। यह तो मेरे अच्छे नसीब थे जो मुझे अब दूल्हा मिल गया, न जाने किस जन्म का लेना देना काम आया। रशीद को मैंने पर्दे की आड़ से देखा था और मेरा कलेजा धक से रह गया था। मैंने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि इतना हसीन दराज कद गोरा मुझे कबूल करेगा। मेरी रंगत बस गंदमी है, मगर रशीद तो बिल्कुल अंग्रेज धरे हैं। खड़ा नक्श, घुंघराले बाल, सुरमगी आंखें, मैं तो उनके सामने काली कलूटी लगूंगी। दुल्हन को दूल्हा से ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। स्कूलों कॉलेजों में सभी कुछ सिखाया जाता है, मगर कोर्स में सुहागरात के बारे में खाक धूल भी नहीं मालूम। मुझे मुश्किल से 19वां साल लगा होगा। फिल्मी हीरो पसंद थे, पर किसी की दीवानी कभी ना बन सकी। बुजुर्गों ने लड़कों से मोहतात रहना सिखा ही दिया था। मैं थी भी पढ़ाकू, लड़कियां छेड़ती, गंदी बातें खुसुर फुसुर करती तो मैं कतरा कर निकल जाती। अता पता तो था, मगर हकीकत नहीं मालूम थी। मुमानी बी ने कभी कान में फूका था तो निकाह के बाद, वह तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा मालिक खुदाए मजाजी है बेटी, उसका हुक्म से राखों पर, इसी में औरत जात की भलाई है। मगर मैंने ख्वाब में भी ना सोचा था कि मेरी भलाई यू आंधी तूफान की तरह मुझ पर टूट पड़ेगी। मेरे दूल्हा ने कमरे में आते ही अलमारी का रुख किया, कुछ बोतल और गिलास की खनखनाहट सुनाई दी। पता नहीं कब बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मेरे मुंह से दबी हुई चीख निकल गई। बाहर खड़ी हुई लड़कियों के गलों में घुंघरू बजने लगे। मैंने उस वक्त किसी गैर मर्द की उंगली तक ना छुई थी। कभी किसी की तरफ तवज्जह गई भी तो फौरन सहम कर वापस खींच ली। गैर मर्द का तसब्बुर भी गुनाह अजीम है। शरीफ लड़कियां इस गुनाह से बचती हैं। अल्लाह ताला हर इंसान की किस्मत का साथी पैदाइशी ही चुन लेता है, मगर कभी भी यह समझ में ना आया कि इस चुनाव में कौन सी अर्थमेटिक इस्तेमाल में आती है। राजो महाराजों और अक्सर मर्दों के हिस्से में अनगिनत औरतें लिख देता है, और रंडियों के हिस्से में बेशुमार मर्दों का भुगतान। इस बंटवारे में बड़ा ही घपला है। बुजुर्ग कहते हैं, किस्मत का लिखा हर जानदार को भोगना पड़ता है। ऐसी ऊटपटांग किस्मत कौन लिखता है। एक तूफान था जो अचानक फूट पड़ा। दूल्हा मियां सरपट घोड़ा दौड़ाते आए और गोता मारकर निकल गए, और एक कद मरी चूहिया को कोने में सिमटा छोड़कर लंबे लंबे खर्राटे लेने लगे। बड़ी देर तो यही लगा जैसे कोई निहायत डरावना ख्वाब था। सहेलियां, रिश्ते की बहनें, यहाँ तक कि बड़ी बूढ़िया भी मेरी दुर्गत देखकर खिलखिला उठी। बकरे को देखकर शेर की मर्दानगी का अंदाजा हो जाता है, रौब बैठ जाता है। औरत तो मुजस्सिम कुर्बानी होती है, उसका मजहब है देना और जवाब में कुछ न मांगना। करोड़ों बकरियां दिन रात काटी जाती हैं, सीख कबाब कोरमा बिरयानी मुहैया करती हैं। कभी किसी नेक भक्त बकरी ने मेह की और मैंने भी मेह को जेहन की कोठरी में कैद करके ताला मार दिया। मैं अपने शौहर के मुकाबले में बहुत कम रूठी, जहेज भी मामूली ही मिला था। लोग मेरी किस्मत पर रश करते थे, यूं अचानक मेरी किस्मत जाग उठी। मैं तो यही सोचा करती थी बीए के बाद बीएड करूंगी, कोई प्रोफेसर लेक्चरर जरूर मिल जाएगा, मैं भी नौकरी करूंगी, अच्छी गुजर हो जाएगी। मगर अब मेरी साथ वालियां मेरी खुशकिस्मती पर रश करती तो मुझे भी किस्मत पर नाज होने लगता। मेरे शौहर की छुट्टियां खत्म हो गईं तो हम कोटा चले गए। अफसरों की कोठियां दूर दूर थी, फिर भी शुरू में नौ ब्याहे जोड़े की दावतों में मिलना जुलना हुआ। न जाने क्यों सभी को रशीद की शादी से बहुत खुशी थी। बीवियां कहती भाई बड़ा अच्छा हुआ, मगर उनकी आंखों में मुझे न जाने क्या नजर आता कि उलझन सी होने लगती। रशीद मर्दाना हुस्न के बेमिसाल नमूने थे, लोग अपनी बेटियों की तरफ से डरते होंगे। सबके सामने तो रशीद बड़े आशिक शौहर बन जाते, वह घिसे पिटे जुमले दोहराते कि मुझसे डरते हैं, मुझ पर मरते हैं, रूठ गई तो जान दे देंगे। मर्दों के मजाक आमतौर पर इसी मौजू पर होते हैं। बीवियों की इन्हीं बातों से साख बनती है, जाहिर गो में जूते मारते हों, अमल में बड़े ही फरमा बरदार शौहर खुद को जाहिर करते हैं। कम्बक ढोंग रचाते होंगे, क्योंकि रशीद का रवैया मेरे साथ बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमारे दरमियान कोई बातचीत का मौजू ही नहीं था, बस कुत्ते की खैरियत पूछ ली, ड्रिंक के बारे में या नौकरों के बारे में कुछ पूछ गछ कर ली। अगर थकान से नींद ना आ जाती तो बात आगे भी बढ़ जाती, मगर रशीद को शिकायत थी कि मैं निहायत ठंडी हूँ, उन्हें भी बुझा देती हूँ। कोई ऐसी सहेली भी ना थी जिससे कुछ पता चलता, सभी ब्याही हुई थी या कमसिन बच्चियां, और ब्याही औरतें मेरी ही तरह खुशनसीब थी। रशीद घर का खर्च अपने ही हाथों में रखते थे, ज्यादातर तो चेक से अदा करते थे। मेरे हाथ में रुपया ना होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, कंपनी के स्टोर से सब कुछ ले सकती थी, महीने पर बिल रशीद के पास आ जाता था। इस खुशनसीबी के बावजूद मेरा वक्त काटे नहीं कटता था। अक्सर सोचती थी रशीद को मुझे लाने की क्या जरूरत थी, क्लब में उन्हें सभी कुछ फ्री में मिल जाता है, फिर मैं क्यों हूँ। बजाय स्टोर को ऑर्डर की पर्ची देने के मैं खुद ही स्टोर चली गई। रोक नहीं थी पर दिल ही नहीं चाहता था कि मैं अपने लिए भी कुछ खरीदूं। सिंगार से क्या फायदा जब मियां पलटकर देखता ही नहीं, रात को खाने पर भी नहीं आते। मैंने बैरा से कहा तो वह बोला उनके पास कोई आया है, वह लेबोरेटरी में खाना खा रहे हैं। जी चाहा पूछूं कोई आया है कि आई है, नौकरों के मुंह लगना अच्छा नहीं, कुछ बदतमीज से नौकर हैं, पीठ पीछे कुछ खुसर फुसर करते हैं। मैं ऐसी जल जाती हूँ जैसे मेरी ही बदी कर रहे हैं। मैं तो उनकी आंखों को पढ़ना भी नहीं जानती थी, मुझ पर तरस खा रहे हैं, नाराज और शाकी हैं या मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे मैके में तो कम उम्र छोकरे काम करते थे, जवान मर्द अंदर नहीं आते थे। रशीद ने मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलाया, दो चार दावतों के बाद बस कैद तन्हाई थी। और मैं स्टोर से सामान खरीद कर मैंने कह दिया कि कोठी भिजवा दे, कुछ शैम्पू और यूडी क्लोन वगैरह मैंने थैले में डाल दिया। सामान की लिस्ट पर दस्तखत करके निकली तो किसी साहब से टक्कर होते होते बची, थैली मेरे हाथ से छूट गई और एक बोतल टूट गई। अरे तुम, सामने अकबर बादशाह खड़े थे। मेरा दिल एकदम से उछला और डूबने लगा। हम औरतों के दिल भी भानमती का पिटारा होते हैं, कुछ चीजें हम चुरा कर उन्हें इस पिटारे में छुपा देते हैं और अनजान हो जाते हैं, खुद अपने आप से उनके वजूद पर इकरार नहीं करते। फिर बुढ़ापा आ जाता है तो जेहन सभी कुछ भूलने लगता है, यादें मर जाती हैं। अकबर हुसैन ने कॉलेज के ड्रामे में अकबर बादशाह का रोल किया था, हम लड़कियां इन्हें पीठ पीछे अकबर बादशाह कहा करते थे। उन्होंने जल्दी जल्दी बिखरा हुआ सामान समेटा, शैम्पू की शीशी टूट जाने पर बहुत शर्मिंदा हुए मगर बदहवासी में पकते चले गए। तुम एकदम कहाँ गायब हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। शादी वतन में हुई थी, क्योंकि रशीद का खानदान भी आगरा का था और उसके बाद लखनऊ जाने का मौका ही नहीं मिला। चलो एक कप कॉफी हो जाए, अकबर ने मेरा बाजू थामकर जवाब सुनने से पहले मुझे रेस्तरां में घसीट लिया। रेस्तरां सुनसान पड़ा था, हम एक नीम तारीख गोशे में बैठ गए। मैंने तहैया कर लिया था कि अब के मिलूंगी तो चुप नहीं रहूंगी। खुदा कसम, हम हिंदुस्तानी नौजवान मुंहबंद डिब्बों में पलते हैं। बचपन ही से लड़की से खबरदार कर दिया जाता है, नहीं लड़कियों में मत घुसो, किसी की बहू बेटी को ना ताको। शरीफ लड़के लड़कियों से बात नहीं करते कि शरीफ लड़कियां चप्पल से मुंह तोड़ देती हैं। मुस्कुरा कर जवाब दे, पर रंडियां होती हैं। हिंदुस्तान में बस शरीफ लड़कियां होती हैं या रंडियां, इसलिए तो लड़के या तो आवाजें कसते हैं या जान बचाकर भागते हैं औरतों के साये से। फिर एक दिन बिल्कुल अनजान लड़की 16 सिंगार करके पकड़ा दी जाती है और हुक्म मिलता है इसे अपने बच्चों की माँ बनाओ। लाहौल विला कुवत। अच्छा खैर यह तो बताओ, बीए के बाद बीएड किया या एमए? बीए ही नहीं किया, मैंने कॉफी में चम्मच चलाते हुए कहा। बीए यानी? बीए नहीं किया, मगर क्यों? शादी हो गई। शादी? ऐसे फर्स्ट डिविजनर ने तालीम अधूरी छोड़ दी? किसी गुलफाम पर दिल आ गया होगा। मैं चुप कॉफी के घूंट जहर मारकर पीती रही। फिर घड़ी देखकर मैं उठ खड़ी हुई। कॉफी तो पी लो। नहीं, गुलफाम का हुक्म नहीं। नहीं, अकबर का चेहरा मस्क हो गया। खुदा हाफिज अकबर बादशाह, मैंने उठते हुए कहा। खुदा हाफिज अनारकली, आपका बस चले तो दीवार में जिंदा चुनवा देते अलीजा। न जाने क्यों मैंने छेड़ा, जिस दीवार के पीछे तुम्हें जिंदा चुनवा दिया है वहाँ से कयामत तक ना निकल पाओगी। अकबर की आंखों में बिजलियां कौंध रही थी। मैं तो समझी थी यह घनी पलकों की ओट में छुपी स्याह नाक जैसी पुकारती आंखों से पीछा छूट गया है, उन्हें भूली यादों के अंधेरे में दफन कर दिया है। जब मैं किसी और की मिल्कियत हूँ, मेरा खुदा ये आंखें नहीं कोई और है, जिसके साथ मुकद्दस अल्फाज का बंधन बंधा, मेहर की रकम के एवज में जीने का हक दे चुकी हूँ। मैं किसी और की हूँ, मगर मेरे पैर मेरे बस में ना थे। मैं पत्थर की लाट की तरह वही गड़कर रह गई थी, जैसे वाकई अकबर ने मुझे अपने वजूद की दीवार में चुन दिया हो। वहाँ से निकलने के लिए मैं बेचैन नहीं, सुकून से पेंग ले रही हूँ। मोटर में बैठने के बाद मेरी आँखें सूखी ही रहीं। अजीब दिल की हालत थी, दिल खुशी से नाच रहा था। कॉलेज में हजार तालों में बंद करने के बावजूद बेतार बरकी मेरी चाह अकबर के दिल में रेंग गई थी, और मैंने भी उसकी याद का मकबरा अपने जेहन में तामीर कर लिया था। जिन मुल्कों में लड़कों लड़कियों को मिलने जुलने की आज़ादी है, वहाँ ये मोजज़े नहीं होते। पुराने जमाने में तो शहजादा शहजादी की जूती या ओढ़नी का पल्लू देख कर ही सौ जान से आशिक हो जाता था। कॉलेज में दूर से देखने और कभी कभी पास से गुजरने की भी जरूरत ना थी। जब वापस लौटी तो खाना भी नहीं खाया, भरा भरा जी लिए बैठी थी। नौकर ने लंच याद दिलाया तो उठी। साहब को खिचड़ी भेजी? रात को कुछ तबीयत भारी थी। जी साहब तो दफ्तर से वापस आ गए और खाना लेबोरेटरी में लगाने को बोला है। खाना डाइनिंग रूम में लगाओ। जी वह उनके साथ कोई आया है। वह? मैं चुप हो गई, बावर्ची को छुपा रहा था। इशारों कनायों से समझाने से मेरी समझ में बहुत ही कम आता है। किसी के मियाँ के पास कोई आता है तो किसी को फिक्र नहीं होती, आती कोई तो बेशक बात खतरे की होती। अब तो विलायत और अमरीका से ऐसी किताबें आने लगी हैं कि बच्चा बच्चा सब कुछ जानता है। हम कमबख्तों के जमाने में तो बस लड़कों लड़कियों में कुछ गड़बड़ का हादसा होता था, घर उजड़ते थे, इज्जतें लुटती थी, लेकिन कोई आता है तो क्या फिक्र की बात है। मैंने टेलीफोन उठाया कि स्टोर को शैम्पू के लिए कह दूं। पता चला रशीद लेबोरेटरी में किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। उधर कोई गरज रहा था। जी नहीं पर यहाँ नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरी तबीयत खराब है, आज छुट्टी ले ली है। जी मुझे कोई पता नहीं, मैंने जल्दी से टेलीफोन रख दिया। कोई तेजी से मोटरसाइकिल पर कोठी के फाटक से निकल गया। रशीद तेजी से कमरे में आए। मुझे टेलीफोन के पास कुछ चोर सा बैठा देखकर उनका रंग सफेद पड़ गया, फिर एकदम लाल होकर बोले, टेलीफोन तुमने उठाया था? जी। क्यों, मुखबिरी करने का इरादा है? जी जी नहीं तो। मैं हकलाई। तो फिर? आपको खाने के लिए कहना था। तुम्हें मेरे खाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मगर तुम खा लो, मुझे करने दो। तुमने मेरी जिंदगी खाक में मिला रखी है, मगर मेरा कसूर? और ऊपर से पूछती हो तुम्हारा कसूर? कभी आईने में अपनी मनहूस सूरत देखी है? क्या बीवी को मियाँ से ज्यादा खूबसूरत नहीं होना चाहिए? जी मगर आपके घर वाले मुझे देख गए थे। घर वाले मेरे जानी दुश्मन, उन्होंने हमेशा नफरत ही दी, मुझसे जलते हैं, हसद के मारे मरे जाते हैं। मेरी शक्ल सूरत दादा जान पर गई है। जानती हो दादा जान की 4 बीवियों के अलावा लौंडियां, बादियां और 2 दाशताएं थी। लखनऊ की मशहूर रंडी मुन्ना जान और मेरठ की ताराबाई कहती थी, निकाह में ले लो वरना जहर खा लूंगी। न जाने क्यों मैं डांट फटकार भूलकर कहानी से मशहूर हो गई। फिर क्या, दादा जान ने फटकार दिया। अरे कोई जमाने भर के जुठाली औरत को बेगम बनाता है? रंडियों से कई लोगों ने निकाह कर लिए। मैं बोली, जिंदगी में रशीद ने मुझे इतने मुकामले नहीं बोले थे, वह कोई अल्लाह के बेटे होंगे। दादा जान अहमक नहीं थे, रंडी को घर की बेगम बना दिया तो आगे सारे दरवाजे बंद। जी मैं समझी नहीं, आगे कौन से दरवाजे? अरे जो रंडी बड़े बड़े कौड़ियाले नाक खेल चुकी हो और तौबा कर ले तो बड़ी चौकस हो जाती है, फिर अपनी जान पर सौत क्यों लाने देगी? मक्कार होती हैं ये औरतें। मैं अहमकों की तरह गर्दन हिलाती रही। और जो मैं तुम पर सौत ले आऊं तो? मैं कांप उठी। सौत? मैंने लरस्ती आवाज में कहा। हाँ मैं एक और शादी कर रहा हूँ। मैं गुमसुम बैठी रही। क्या दूसरी शादी का हक नहीं मुझे? तुम में बात ही क्या है? क्या मुझे तुमसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती थी? लोग कहते हैं बिल्कुल अंग्रेज मालूम होता हूँ, औरतें मेरे कदमों में बिछी जाती हैं, मगर तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिलते, हाथ लगाते ही तख्त बन जाती हो। आंसू बेख्तियार मेरी आंखों से उबल पड़े। मैंने आंखें खोलकर बस यही सुना, यह फेले बद है, शरीफ औरतों को अल्लाह की तरफ ध्यान लगाना चाहिए। जब हमारी चची जान पर सौत आई तो वह दिन रात वजीफे पढ़ती थी, चिल्ले बांधती थी, जोगियों से मियाँ को रिझाने के लिए भस्म मंगाती थी। तौबा तौबा कुफ्र है, मगर ठकुरानी की सलाह से करवा चौथ के उपास भी रखे और बड़ा फायदा हुआ। चचा ने सौत को मार के निकाल दिया और चची से मूंग की दाल के लड्डू बनवाए और शलजम के अचार की फरमाइश की। हलवा तो चटपट बन गया, मगर अल्लाह मारा शलजम का अचार उठने में तो दिन लगते हैं। इतने में चचा का दिल एक चमारिन पर आ गया। चची मर गई, मगर मियाँ को जसने की लत न गई। सौते मौसम के साथ बदलती रही, आवागमन बंद न हुआ। एकदम रशीद मेहरबान हो गए, जिद करके पिक्चर दिखाने ले गए। एक दिन बोले, क्लब चलो, वही डिनर ले लेंगे। मैंने भी अकबर से मिलने के बाद अपने डगमगाते घर बार को मुस्तहकम करने का तहैया कर लिया था। मैं ऐसी गई गुजरी भी नहीं कि बैठी तमाशा देखती रहूं। शाम ही से तैयारी शुरू कर दी। सुरमई सर्ज के सूट में रशीद वाकई अंग्रेज लग रहे थे, मगर मेरा गंदमी रंग आज चंपई हो रहा था। हल्का हल्का मेकअप, तायरी रंग की कांजीवरम की साड़ी, भारी सोने का गुलबंद। आया की आंखों में चमक आ गई। आज तो बहू जी पद्मिनी सुमा लग रही हो, साहब की छुट्टी हो जाएगी। मैं झेप गई। क्लब में खूब रौनक थी। रशीद तीसरा पैक चढ़ा रहे थे। मुझे जरा घबराहट हो रही थी, एकदम मेरा कलेजा मुंह को आ गया। शहंशाह अकबर, महारानी जोधाबाई और 2 कमसिन लड़कियों के साथ दाखिल हुए। बैरा उन्हें हमसे दूर एक मेज पर ले गया। दाखिला के दरवाजे की तरफ रशीद की पीठ थी, उन्होंने देखा नहीं। फिर जब उनकी नजर अकबर की मेज पर पड़ गई तो एकदम रंग सफेद फिर सुर्ख हो गया। मेरा दिल डूबने लगा। जरूर वह जोधाबाई को आंखों ही आंखों निहार रहे थे। अकबर भी उनसे बड़े प्यार से कुछ कान में कह रहे थे। शायद उन्होंने रशीद की तरफ इशारा किया। रशीद ने गर्दन के इशारे से जवाब दिया। कौन है यह हसीना? मैंने पूछा। अकबर हुसैन की बहन है ना, कतलाले आलम। जलो मत, जल के मैं क्या करूंगी? मैंने भरी हुई आवाज में कहा। क्लब आने की सारी खुशी खाक में मिल गई। खाना आ गया और हम खाने में लग गए। दूसरा कोर्स आने से पहले रशीद एकदम उठकर बाथरूम जाने का इशारा करके उठ गए। मैं नजरें झुकाए बैठी रही। हेलो, अकबर कब उठकर आए मैंने नहीं देखा। मेज पर अब वह हसीना और एक लड़का बैठा था, दूसरा गायब था। हेलो, मैं चौंक पड़ी। हेलो, मुझसे तो बड़ी पारसाई जता रही थी और अब इस हरामजादे के साथ खुले बंदो क्लब में गुलछर्रे उड़ा रही हो। तुम्हारा शौहर नामुराद मैं अहमकों की तरह मुंह देखने लगी। मतलब यह कि यह रशीद जानवरों से भी बदतर इंसान है, मगर तुम्हारे शौहर को पता चल गया तो भाई मैं तो यहाँ नया नया आया हूँ, किसी को जानता नहीं। यह उल्लू का पट्टा लड़कियों को बस शो के लिए ले जाता है। कुवारा है ना, छड़ा और कुवारा ही मर जाएगा। कुवारा? मेरे जुबान खुश्क थी, दिल उथल पुथल हो रहा था। मैंने रशीद को वापस लौटते नहीं देखा। ओह अकबर साहब हैं, कॉलेज में साइकोलॉजी के प्रोफेसर, माय वाइफ। एक लम्हे के लिए अकबर का रंग उड़ गया, मगर बड़ी तेजी से उन्होंने अपने जज्बात पर काबू पा लिया। आदाब अर्ज, मैंने बड़ी जोरदार एक्टिंग की। अच्छा तो फिर मुलाकात होगी। जी जरूर। अकबर के जाने के बाद रशीद का मूड एकदम बिगड़ने लगा। अब इसमें मेरा क्या कसूर जो लड़कियां मुझ पर मरने लगती हैं? रशीद मुस्कुराए। आपने उनसे यह क्यों कहा कि आपकी शादी नहीं हुई? मैंने कतई यह नहीं कहा, न ही उन्होंने पूछा। मगर आपका तो फर्ज था कि मिले थे तो कायदे से बीवी का जिक्र। ऐसी मेरी बीवी परिजाद है कि उसका हर एक से जिक्र खैर करता रहूं। सब कहते हैं निहायत ही बेजोड़ शादी हुई। देखो इस वक्त जितने मर्द बैठे हैं उनके पहलू में हसीन लड़कियां ही नजर आ रही हैं। अकबर की मेज पर नजर गई तो वह लोग उठकर वापस जा रहे थे। मेरा रंग रशीद से दबता हुआ है, लेकिन आज तक किसी ने मुझे बदसूरत नहीं कहा था। मेरा दिल डूबने लगा। कॉलेज में तो मेरा चार्मिंग लड़कियों में शुमार था। बेफिक्री के दिन थे, अब तो एहसासे कमतरी ने चेहरे पर फटकार बरसा दी है। बेअख्तियार आंसू उबल पड़े। ओहो तुम्हें लाकर झक मारी। अच्छा सॉरी डार्लिंग, अब दूसरी शादी कर लीजिए। अरे गोली मारो लड़कियों को, एक से क्या मिला जो दूसरी देगी। अपन तो अब संन्यास लेने वाले हैं। मैं चुप रही तो बोले, तुम एकदम ठंडे हो बेजान। तुम चाहती तो अपना गुलाम बना लेती। तुम समझती हो तुम काली हो इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती। पम्मी की रंगत तो इतनी काली थी जैसे मेरे बाल नहीं, मेरे बाल तो जरा भूरे हैं जैसे तुम्हारे बाल। रशीद की आंखों में बीते हुए दिन जाग उठे। लड़कियों का जिक्र मजा ले लेकर करने लगे। बाजी लड़कियां तो बस मक्खियों की तरह चिपट जाती हैं, घिन आने लगती हैं। रशीद बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे, मगर उनकी आंखों से उकताहट बरस रही थी। भाई हद से ज्यादा बोरियत हो रही है। उन्होंने बैरा को इशारा किया, बिल लाने को कहा। अभी तो 10 भी नहीं बजे और आपने तो कहा था आज खाना भी खाएंगे। मैंने नौकरों से कह दिया था कि तुम लोग अपने लिए खिचड़ी पका लो, खाना भी नहीं। हम भी खिचड़ी खा लेंगे तो क्या गजब हो जाएगा, शायद बची भी ना हो तो कुछ आमलेट वगैरह बन जाएगी। वापस घर पहुंचे, मैं कपड़े बदलने गुसल खाने में गई। लौटी तो रशीद फोन पर बात करके रख रहे थे, फिर उठकर आईने के सामने कंघी करने लगे। नया रुमाल दराज से निकाल कर यूडी क्लोन छिड़का। कपड़े नहीं बदले? नहीं, मुझे फैक्ट्री में कुछ काम आ पड़ा है। इतनी रात गए? अभी तो 10:45 हैं, अक्सर तो 12 तक ड्यूटी चलती है, मगर आज मैं जल्दी लौट आऊंगा। मगर रशीद 5:30 बजे लौटे, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, बेसुध से पलंग पर पैर टिकाकर बैठ गए। मैं जूता उतारने लगी तो चिढ़ गए। मैं हैरत से मुंह ताकने लगी। एकदम उन्होंने दोनों हाथों से मेरा चेहरा ढांप लिया और बेतरह रोने लगे। मैंने अपनी जिंदगी में किसी मर्द को ऐसी बुरी तरह बुकरते नहीं देखा था। मैंने पूछा क्या बात है? वह कुछ नहीं बोले, वैसे ही सिसकते रहे। मैंने गिलास में पानी उड़ेल कर दिया। आखिर मैं कोई गैर नहीं, आपकी अपनी हूँ। कोई परेशानी हो, कुछ हो, आप तो मुझे बताते ही नहीं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई कि आप मुझे कुछ भी नहीं बताते? इधर कई दिन से आप बेहद परेशान हैं। कुछ नौकरी की गड़बड़ी है? नहीं तो, तुम्हें किसने कहा? किसी ने नहीं, मैं तो बस यूं ही कि और क्या बात हो सकती है। आप मुझे गैर क्यों समझते हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, आपका दुख मेरा दुख। उफ, तुम तो बस जरा सी बात पर भेजा खाने लगती हो, हर बात तुम्हें बताई जाए। यह बोसिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वह खड़े हुए। मैं लेबोरेटरी में सो जाऊंगा, वरना तुम चलो फिरोगी तो मेरी नींद हराम होगी। मेरी आंखें भर आईं। अगर सिवाय उकताहट और परेशानी के मैं कुछ नहीं दे सकती तो मुझे घर भिजवा दीजिए। लल्लाह मुझ पर रहम करो, रशीद चीख पड़े, तो मुझे पागल बना दोगी। मुझे हैरत ज़दा देखकर एकदम बुझ गए। ओ डियर आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मेरा हाथ पकड़कर पास बैठा लिया। मेरी थोड़ी ऊंची करके बोले, कौन कहता है तू बदसूरत है मेरी जान, मैं ही अंधा हूँ। रशीद के मुंह से दारू का भपका आया, मगर मैंने दम घोट लिया। वाकई मैं अब ठंडी हूँ। शर्मो हया की पासदारी की वह कीलें जो बचपन से मेरे सिर में ठोकी गई हैं, जंगी आ चुकी हैं। मगर नहीं, मैं पत्थर की मूरत नहीं, 21 साल की नरम गरम औरत हूँ। यह तो गैर नहीं, मेरा अपना है, मेरा महबूब है, खुदा है मजाजी है, स्वामी है, मेरा कन्हैया है। और फिर नदी का बांध टूट गया, मगर रशीद का रंग फक हो गया। गुस्से से उनका चेहरा दहक उठा। उन्होंने मेरे झूमते लहराते वजूद को दूर ढकेल दिया। कुतिया, हरामजादी, ये तखंडे तूने कहाँ से सीखे? या रंडियों के दांव, पेंच, पैंतरे यार अकबर ने सिखाए होंगे? वरना कौन संजय गरमाता है जो तू आज लात मार मार कर उन्होंने मुझे मसहरी से नीचे गिरा दिया और भन्नाते बाहर निकल गए। पूरा महीना गुजर गया, रशीद लापता है। अजीब किस्म का खौफ गला दबोचे लेता है। अकबर भी अपनी बीमार माँ को देखने गए हैं। नहीं, उन्होंने छुट्टी नहीं ली, ना किसी काम से भेजे गए हैं कंपनी की तरफ से। रातों को बिजली जलाए दुआएं पढ़ती रहती हूँ। और फिर तूफान फट पड़ा। त्रिवेणी होटल के कमरा नंबर 11 में मसहरी पर दो लाशें पाई गई। मौतें किसी जहर से वाका हुई हैं। मेरे हवास गुम है। तार पाकर भैया आ गए हैं। एक हफ्ता उल्टी सीधी कार्रवाइयों में गुजरा। मेरी समझ काम नहीं करती, क्या हुआ, क्यों हुआ। वापसी के ख्याल से दम घुटा जा रहा था। दुल्हन बनकर रही थी, नीम मुर्दा लौट रही हूँ। रवानगी से पहले अकबर आए। वह दूसरी लाश उनके भांजे मुमताज की थी, जिसे मैंने उस दिन क्लब में देखा था, जिसके पीछे रशीद उठकर चले गए थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं दिसंबर की छुट्टियों में लखनऊ आऊंगा। मैं खामोश रही। सेहत का ख्याल रखना, तुम्हारे खत का इंतजार रहेगा। मेरी आंखें छलक उठी। उसी नकारा पर प्रोट के लिए आंसू जाया कर रही हो? आंसू तो उन सब बदनसीब नौजवानों के लिए खुद ब खुद बह रहे हैं जो रशीद की तरह जहन्नुम के अजाब सहकर मरते हैं, या मेरी तरह जिंदा दरगोर जीते हैं। वह फ्रॉड था। तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की थी कि तुम्हारी आड़ में शिकार खेल सके। हाँ, उसे मेरी जरूरत और मेरे वालदैन को एक अदद दामाद की जरूरत थी, और मुझे एक पालनहार की जरूरत थी। जरूरत एक क्लर्क की, एक अदद टाइपराइटर की, पुरानी मोटर की। आपने वांट के कॉलम देखे हैं? क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? चलो उठो, मुंह धो लो, चपरासी टैक्सी लेने गया है। जरा सोचते तो शहंशाह, दुनिया का सबसे हसीन, सबसे नाजुक, सबसे अहम और रगे जा के करीब रिश्ता जरूरत की बुनियाद पर कायम है। लड़के लड़कियां अलग अलग पिंजरों में एक दूसरे से बहुत दूर पाले जाते हैं। लड़के हूरों के ख्वाब देखते हैं, लड़कियां परियों के, शहजादों के इंतजार में रत जगे मनाती हैं। फिर जरूरत कभी इन नवाबों को गडमट कर रही है। कभी परियों का शहजादा हूरे बहिश्ती का रूप धार लेता है। सब उथल पुथल हो जाता है। फिर एक दिन जरूरत दो इंसानों को मियां बीवी बना देती है, और कुदरत के बनाए उसूलों को भुलाकर दुनिया के लागू किए कानून के मुताबिक जीते हैं, मरते हैं। इस वक्त तुम्हारे दिल में बहुत जहर भरा हुआ है, मेरा इंतजार करना। शुक्रिया, मगर एक बार मैं तो अपना इंतजार करके देखूंगी। एक बार खुद को पा लिया तो आसमान की बुलंदियां नाकाबिले रसाई हैं। इतनी ऊंची उड़ान न लगाना कि आसमान की बुलंदियों में इस खाक नशी अकबर को भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अनारकली ने महाबली को दिल की दीवार में चुन दिया है, आसानी से ना निकाल पाएंगे। टैक्सी पर सामान रखा जा चुका था, मेरे नाम की पुकार हुई। उठते उठते एकदम हमारी आंखें आपस में उलझ गई। सनसन करते ना जाने कितने युग एक लम्हे में बीत गए। आंखें छलक उठी। मेरे आंसुओं से भीगे आंचल में अकबर ने अपने मोती भी पिरो दिए और पल्लू हथेली पर रखकर आहिस्ता से मुट्ठी बंद कर दी। अपनायत और दोस्ती की अनगिनत सदियां हमारे होठों ने चुन के दिल में समो ली। खुद एतमादी और भरोसे का ठांठे मारता समंदर दोनों हाथों में समेटे मैं टैक्सी में बैठ गई।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।